आप सभी ने भट्टी में इतने दिनों तक तपस्या की है और ज्ञान की गहराई में भी गए हैं, तो सभी हमारे पुरुषार्थ का टोटल लक्ष्य क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनना, संपूर्ण बनना अगर हम उसको संक्षिप्त में कहें तो। आज हम 16 कला संपूर्ण क्या होता है उस विषय में चर्चा करेंगे। सर्वगुण संपन्न की जब बात करते हैं तो गुणों के विषय में तो हम जब आत्मा का पहला लेसन हमारा होता है तभी से हम सुनते हैं और समय प्रति समय मुरलियों में भी बाबा धारणा के लिए हमें वो इशारा देते रहते हैं। लेकिन जब 16 कला संपूर्ण की बात होती है तो कईयों को ये प्रश्न होता है कि ये कलाएं क्या है, क्योंकि पिछली जब माताओं की भर्ती हुई थी तो उसमें जो पैनल सेशन हुआ था तो उसमें एक प्रश्न ये पूछा गया था कि बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण बनना है तो क्या हमें नृत्य कला, चित्र कला या जो भी दूसरी कलाएं हैं, पाक कला, ये सब हमें सीखना होगा, क्योंकि हमें तो ये सब कलाएं नहीं आती हैं। तो बाबा जब 16 कला संपूर्ण कहते हैं तो बाबा का ये भाव नहीं है, हालांकि लौकिक वाली जो कलाएं हैं वो भी विशेषताएं हैं। कला उसे कहा जाता है जो किसी में विशेष होती है, जिसे साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन जो कलाकार है वो कर सकता है। यदि कोई चित्रकारी की कला जानता है तो उसे पता है कि आंख कैसे बनानी है, नाक कैसे बनानी है, पूरी बॉडी को कैसे शेप देना है, या प्रकृति का कोई दृश्य बनाना है तो वो कैसे बनाना है, और वो जितना सुंदर भाव उसमें व्यक्त करता है उतना ही उसकी चित्रकारी का मूल्य होता है, और वो कला उनकी कमाई का साधन भी बन जाती है। पुराने जमाने में नट हुआ करते थे जो कला की बाजी दिखाते थे कि दो जगह बांस गाड़ करके उस पर एक रस्सी बांध दी जाती थी और वो जो नट था, वो नट होता था वो एक रस्सी के किनारे से दूसरी रस्सी के किनारे तक, और कई बार वो हाथ में भी डंडा लेकर के चलते थे, और जो भी देखने वाले होते थे उस कला को वो जैसे सांस रोककर देखते थे कि कैसे ये उस रस्सी पर चल रहा है। तो वो उसकी कला का प्रदर्शन कहेंगे, उसकी कमाई का साधन है। तो आज भी यदि व्यक्ति में कोई विशेष कलाएं हैं, गायन कला है या नृत्य कला है, तो वो उसकी कमाई का साधन होते हैं। लेकिन यहाँ बाबा हमें कहते हैं कि हमें लौकिक कलाओं में निपुण नहीं बनना है कि हमें भी गाना सीखना है या वो, लेकिन हर कर्म में विशेषता भरी हो, जिसे विशेषता कला कही जाती है, ऐसे जो भी कर्म हम करते हैं और वो हर कर्म में अलौकिकता, रूहानियत कैसे भरनी है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में अलौकिकता ही विशेषता है। तो जो भी कर्म हम कर रहे हैं, चाहे वो देखने का कर्म है, चाहे वो भोजन करना है, चाहे वो चलना है, चाहे वो उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, साधारण कर्म है, लेकिन उस हर कर्म में अलौकिकता दिखाई दे। जैसे वो कला दिखाने वाले आकर्षण करते हैं, अगर कहीं पर कोई कला का प्रदर्शन कर रहा हो, जैसे पुराने जमाने में होते थे नुक्कड़ पर बैठ करके कोई अपनी छोटी मोटी बाजीगरी दिखाना शुरू करते थे तो वहां ही लोग इकट्ठे हो जाते थे, इतना आकर्षण होता था उसका कि अच्छा ये क्या दिखा रहे हैं। तो हमारे भी भले ही कर्म साधारण हो लेकिन वो कर्म आकर्षण करने वाले हों, तो हम कहेंगे कि उस कर्म में कला आ गई है। और अगर नहीं है तो इसका मतलब अभी तक वो कला के स्तर तक कर्म नहीं पहुंचा है, अभी तक वो साधारण कर्म ही है। तो अगर हम इन कलाओं को विभाजित करते हैं कर्मों के अनुसार, तो 16 कलाएं भी बताई गई हैं। सबसे मुख्य कला है सबको अपना बनाने की कला, या जिसे दूसरे शब्दों में हम व्यवहार करने की कला भी कह सकते हैं, या सर्व को मित्र बनाने की कला भी कह सकते हैं। यहाँ शांतिवन में एक स्थान है, 6 नंबर गेट के सामने एक पानी की टंकी बनी हुई है, और आजकल उसके चारों तरफ 16 कलाएं लिखी गई हैं। आप में से भी किसी ने पढ़ी होंगी, पढ़ी है किसी ने? बहुत कम ने पढ़ी है। जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो उसको पढ़ सकते हैं, तो आपको जानकारी मिलेगी। और उसे देखकर ही मुझे विचार आया कि हम 16 कला के बारे में थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम सर्व को अपना बनाने की बात करते हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारा व्यवहार ऐसा हो जिससे दूसरों को आत्मीयता अनुभव हो। और वो कब हो सकता है? जब हम सबको आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, यानी शिव बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है कि ये पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, क्योंकि हम सब आत्माएं एक परम पिता परमात्मा की संतान है। तो हर आत्मा के प्रति, इस विश्व की हर आत्मा के प्रति हमारे मन में प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि हम प्रेम के सागर के बच्चे हैं। और जब वो प्रेम हम स्वयं में महसूस करते हैं, तो वैसा ही प्रेम हम अन्य आत्माओं को भी दे सकते हैं। और इसमें विशेष फिर हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि समय तमो प्रधान है, कलयुग का समय है, तो सब में 5 विकार तो हैं, अवगुण तो हैं ही, कमियां तो हैं ही। तो उनकी कमियों को देखते हुए भी मेरी उनकी कमी पर नजर नहीं जाए, तब मैं उसको प्रेम दे सकूंगी। अगर मेरी किसी की कमी पर नजर जाती है, तो फिर हम उसको वो आत्मीय प्रेम, आत्मा के भाव का जो प्रेम बाबा कहता है, वो नहीं दे पाते। जब हम उसके आदि अनादि स्वरूप को देखते हैं कि अपने आदि अनादि स्वरूप में वो आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, सर्वगुण संपन्न है, तब हम उसको वो रूहानियत वाला प्रेम अनुभव करा पाते हैं। अब देखिए ब्रह्मा बाबा के जीवन की जब हम इतिहास सुनते हैं, तो सभी हमारी दादियां और जो भी भाई उनके संपर्क में आए, वो ये सुनाते हैं कि सब ये महसूस करते थे कि बाबा मेरा है। आज भी भले हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा है, लेकिन हम बाबा से ऐसा महसूस करते हैं कि बाबा मेरा है। वो अपनापन बाबा से हमें महसूस होता है, क्योंकि बाबा के अंदर वो कला थी, वो विशेषता थी कि बाबा अपने व्यवहार से तुरंत किसी को अपनापन महसूस कराते थे, क्योंकि वो सभी आत्माओं को महत्व देते थे। मानो कोई अपने विचार दे रहा है, तो हम उनके विचारों को अगर मान्यता देते हैं, उसे हम स्वीकार करते हैं, तो उसे हमसे अपनापन महसूस होता है। अगर उससे हमें उसको हमसे कोई सहयोग की जरूरत है और समय पर हम उसको सहयोग दे देते हैं, तो फिर उनको हमसे अपनापन महसूस होता है। अगर उनके जीवन में कोई परिस्थिति आ गई और उस परिस्थिति के समय यदि हम उनसे सहानुभूति रखते हैं या उनके प्रति शुभ भावना रखते हैं, तो ये सारे भाव हमारे व्यवहार को कलात्मक बनाते हैं। जो एक साधारण मनुष्य का व्यवहार नहीं होता, लेकिन हम कहेंगे कि हमारे व्यवहार में जैसे वो अलौकिकता और कला समा गई है। फिर दूसरी कला है परिवर्तन करने की कला। तो हम सब यहाँ पर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आए हैं, तो श्रेष्ठ बनाने के लिए कमियों को परिवर्तन करना जरूरी है। अपनी कमियों को महसूस करना और महसूस करके जो भी हमारे अंदर बुरे संस्कार हैं या आसुरी संस्कार हैं, उन संस्कारों को ईश्वरीय संस्कारों में परिवर्तन कर देना, या हम कहेंगे सात्विक संस्कारों में, आत्मा के आदि अनादि संस्कारों में परिवर्तन कर लेना। तो जितना तीव्र गति से वो हम परिवर्तन करते हैं, जब भी वो कमी हम महसूस करते हैं अपने अंदर, तुरंत चेक एंड चेंज, जैसे बाबा कहते हैं चेकिंग हुई और साथ ही साथ वो चेंज हो गया, तो इसको कला कहेंगे। मैंने चेकिंग तो कर ली कि मेरे अंदर कमी है, कमियां तो हैं ही हमारे अंदर, लेकिन चेंज नहीं कर पा रहे, जानते हुए समझते हुए भी अलबेलापन है हमारे अंदर, तो फिर उसको कला नहीं कहेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा को हम देखते हैं, बाबा को जिस घड़ी साक्षात्कार हुआ कि वो विष्णु चतुर्भुज बनने वाले हैं भविष्य में, उस घड़ी ही बाबा के जीवन में पूरा परिवर्तन आ गया। एक सेकंड भी बाबा ने ज्यादा नहीं लिया, ये उनका वो दृढ़ निश्चय था। तो निश्चय से परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होता है, और मम्मा के जीवन में भी आप सब ने मातेश्वरी जी का स्मृति दिवस मनाया और उसमें बहुत सारी मातेश्वरी जी की विशेषताएं सुनी, जिसमें एक विशेषता ये भी थी कि जो मम्मा ने एक बार गलती की वो फिर कभी दोबारा रिपीट नहीं की। इतना तीव्र परिवर्तन मम्मा ने भी किया कि वो नंबर वन जाकर लक्ष्मी बनी। तो हम चेक करें हमारे परिवर्तन की गति कैसी है। फिर तीसरी कला जो है वो सदा प्रसन्न चित्त रहने की कला है। हमारे जीवन में कई परिस्थितियां आती हैं जो मन में निराशा पैदा कर सकती हैं, उदासी पैदा कर सकती हैं, लेकिन बाबा ने हमें ज्ञान युक्त दृष्टिकोण दिया है, और वो ज्ञान अपने जीवन में जब हम व्यवहारिक रूप से अपनाते हैं तो कैसी भी परिस्थिति में हम खुश रह सकते हैं। अब मानो कोई रोग हो गया शरीर को, तो रोग के समय हम क्या समझेंगे कि ये हमारे ही कोई कर्मों का हिसाब किताब है, जो बाबा ने कहा, और मुझे कर्म भोग को कर्म योग से समाप्त करना है, मुझे दवा और दुआ से इस बीमारी को समाप्त करके अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो अगर उसको हम पॉजिटिव सोच लेते हैं, अगर हम समर्थ संकल्प करते हैं, तो फिर हम प्रसन्न रह सकते हैं। और यदि हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, तो ज्ञान अपने आप में हमें वो नशा अनुभव कराता है, वो खुशी अनुभव कराता है कि आत्मा सदा प्रसन्न रह सकती है, जिसे कहा सिमर सिमर सुख पाओ। ज्ञान का स्मरण करने से ही, बाबा को याद करने से ही चित्त और मन प्रसन्न होता है। तो एक योगी में वो प्रसन्न रहने की कला होती है। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि मानो कोई रोग आ जाता है, ऐसी कितनी परिस्थितियां आ सकती हैं, किसी ने आपका अपमान कर दिया, या आपके व्यापार में कोई हानि हो गई, या किसी की मृत्यु हो गई घर में, असमय कभी बच्चे की मृत्यु हो गई, पत्नी की मृत्यु हो गई, कोई भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई, तो हर परिस्थिति के लिए ज्ञान की समझ बाबा ने हमें दी है। ये क्यों उत्पन्न हुई है?
भाई
बार बाबा ने भी हमें ये होमवर्क दिया था कि सदा खुश रहना है और खुश करना है। तो खुश रहना है जब बाबा कहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सामने कोई माया के पेपर या परिस्थितियां नहीं आएंगी, लेकिन उनमें रहते हुए भी उन परिस्थितियों को पार करने की कला हमारे अंदर ऐसी है कि हम दुख में भी सुख का अनुभव कर सकते हैं, चिंता में भी निश्चिंत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, या बेफिक्र बादशाह या बेगमपुर के बादशाह की स्थिति का अनुभव करते हुए, बाबा पर पूरे निश्चय बुद्धि रहते हुए निश्चित विजय का अनुभव करते हुए हम प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। फिर है नेतृत्व करने की कला या प्रशासन करने की कला। नेतृत्व करना उसका अर्थ होता है जब हम दूसरों के वो साथ लेकर के कोई कार्य करते हैं और उसमें उनको हमें प्रेरणा देनी होती है, उनमें उत्साह भरना होता है कार्य करने के लिए, तो उसके लिए पहले स्वयं में भी उतना उत्साह चाहिए। जब हम स्वयं उत्साह में होते हैं तो हम दूसरों में वो उत्साह भर सकते हैं। तो नेतृत्व करने वाले के अंदर एक तो त्वरित निर्णय, तुरंत निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए, व्यवस्था करने की भी क्षमता होनी चाहिए, अगर कोई कार्य की व्यवस्था करनी है तो वो व्यवस्था कर सके, और दूरंदेशी माना भविष्य में आने वाली जो भी परिस्थितियां हैं उनको वो पहले से ही जैसे समझ करके और फिर कोई बड़े निर्णय ले, तो दूरंदेशी बुद्धि होनी चाहिए। तो जब हम योग लगाते हैं, बाबा से योग लगाते हैं, तो बाबा के योग से हमें वो प्रेरणाएं अपने आप मिलती हैं, वो प्लानिंग हमारी बनती है कि पूरे संगठन का नेतृत्व किस तरह से करना है। हमने दादी जी को देखा, दादी जी के साथ कई वर्षों तक मुझे रहने का सौभाग्य मिला, तो मैं देखती थी दादी कभी भी कोई नया प्लान देती थी तो हमेशा अमृत वेले के बाद दादी ये कहती थी कि मुझे ये टच हुआ है, आज मुझे अमृत वेले ये संकल्प आया है। जैसे एक बार हमें समझती 2002 की बात है, उस समय दादी जी को संकल्प आया था मेगा प्रोग्राम करने का, कि इतने बड़े प्रोग्राम हो कि एक ही सभा में लाखों लोग उस कार्यक्रम में आए। तो बस दादी को जब अमृत वेले ये संकल्प आया, दादी ने आकर के वही बात मुरली क्लास में कही, दादी मुरली सुनाते थे और उस समय ही दादी हमेशा कहती थी कि मुझे बाबा ने ये टच किया है और ये मैं कहूं आप सभी करेंगे, तो दादी ने कहा और सब नहीं करें ऐसा हो नहीं सकता, जबकि उस समय पर 1,00,000 की सभा इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात थी, असंभव तो नहीं कहेंगे लेकिन कठिन अवश्य थी। लेकिन दादी ने ये बात कही और उसके एक महीने के अंदर ही अहमदाबाद में सबसे पहला बड़ा मेगा प्रोग्राम हुआ जिसमें 1,00,000 से भी ज्यादा भाई बहनें आए उस कार्यक्रम में। तो ऐसे हमारे अंदर वो क्षमता बाबा के द्वारा जो हमें प्रेरणाएं मिलती हैं उससे वो आने लगती हैं। फिर सीखने की कला। हम सभी गॉडली स्टूडेंट हैं और केवल कुछ वर्षों के स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, तो जब तक जीना है तब तक सीखते रहना है, ये ज्ञान जीवन पर्यंत के लिए है। तो जब हम सीखते हैं तो सीखने वाले के अंदर एक तो गुण ग्राहकता होनी चाहिए, तभी वो दूसरों से गुण सीख सकता है, और दूसरा नम्रता होनी चाहिए। ये नम्रता होती है तभी हम किसी भी बात को अपने जीवन में सहज उतार पाते हैं। अगर पहले से ही हमें अहंकार होता है कि हमने तो जो सीखना था सीख लिया, मैंने तो सारा ज्ञान समझ लिया है, अब इससे आगे क्या सीखना है, अब सीखने को कुछ बाकी रहा ही नहीं, स्वयं परमात्मा का ज्ञान ही तो हमें मिल गया है, तो जब हम ऐसे सोचना शुरू करते हैं तो उस खड़ी ही हमारा सीखना या कहें हमारी उन्नति जैसे कि बंद हो जाती है। ब्रह्मा बाबा को हम देखते हैं, बाबा तो स्वयं परमात्मा शिव के रथ थे, लेकिन फिर भी लास्ट दिन तक, अंतिम दिन तक भी बाबा ने मुरली चलाई और मुरली क्लास के बाद फिर बाद में बाबा ने इस देह का त्याग किया। तो हमको भी ये ध्यान रखना है कि जब तक हमारा ये ब्राह्मण जीवन है तब तक हम विद्यार्थी हैं, हम सीख रहे हैं, कहीं भी कोई हमारी थोड़ी भी कमी है उसे हमें दूर कर लेना है। फिर सिखाने की कला, केवल सीखने की कला नहीं, बाबा ने हमें फिर ये भी जिम्मेवारी दी है कि केवल हमें स्वयं का परिवर्तन नहीं करना है लेकिन दूसरों का भी परिवर्तन करना है, विश्व का भी परिवर्तन करना है। तो मैंने जो सीखा है वो दूसरों को मैं सिखा सकूं, तो उसके लिए भी फिर पहली जो शक्ति हमें होनी चाहिए वो है परखने की शक्ति। हम उस आत्मा को परखें कि वो किस योग्य है, किस तरह से उसे सिखाया जा सकता है। कई तो बहुत विद्वान होते हैं, कई अनपढ़ भी होते हैं, हमारे संपर्क में बहुत वैरायटी प्रकार की आत्माएं आती हैं। जैसे बाबा कहते हैं पहले नब्ज देखो, उस व्यक्ति को क्या चाहिए, उसे अगर शांति चाहिए और आप उसको मुक्ति, जीवन मुक्ति की बात कर रहे हो तो उसे वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि मुक्ति और जीवन मुक्ति क्या होती, क्योंकि पहले उसे क्या चाहिए। जैसे पानी के प्यासे को आप 36 प्रकार का भोजन भी दे देंगे तो वो संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसे पहले क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो पहले आत्मा को परखना जरूरी है कि उस आत्मा की सेवा हम किस तरह से प्रारंभ कर सकते हैं, उसे किस तरह से ये ज्ञान समझाया जा सकता है। फिर वही कि उनके प्रति शुभ भावना, सहानुभूति और अपनेपन का भाव, तब वो कला के रूप में हम उसे वो कर्म सिखा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो हम दूसरों को सिखाने जा रहे हैं वो हमारे प्रैक्टिकल जीवन में होना जरूरी है। अगर हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, दूसरों को तो आप बहुत ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें सिखा रहे हैं लेकिन वो ये देखते हैं कि आपके अपने जीवन में वो सब बातें व्यवहार में नहीं है, तो फिर वो सिर्फ सुनने तक ही रह जाएगा, वो भी सचमुच आपसे सीखेंगे नहीं, फिर वो कला नहीं है। और फिर है वाणी की कला, ये सातवीं कला है वाणी की कला। हम जैसे भी बोल बोलते हैं तो एक तो हम साधारण रीति से बोलते हैं, जो मन में आया वैसे हमने बात किया, जिस भाव से आया उस भाव से मैंने अपनी बात कह दी, लेकिन जब हम बहुत मधुरता से, बहुत शुभ भावना से, सुख देने के भाव से, किसी को उत्साह बढ़ाने के भाव से, आशा और हिम्मत बढ़ाने के भाव से जो बोल बोलते हैं, वो बोल उनको अमृत वचन जैसे लगते हैं। कहते हैं इनके मुख से तो जैसे फूल झड़ते हैं, ऐसे कहने में आता है। और जब हम ऐसे ही कटु वचन बोल देते हैं, जो मन में आया वो कह दिया हमने, तो क्या कहते हैं, इनके मुख से तो पत्थर निकलते हैं। तो एक तो मुख से रतन निकले और दूसरा, तो अगर दूसरों को ऐसा महसूस होता है हमारी वाणी सुनकर के उनको इतना सुख मिलता है, तो हम कहेंगे हमारे अंदर वो वाणी की कला है। फिर यदि हम किसी को कोई अपनी बात स्पष्ट करना चाहते हैं तो हम इस तरह से उसे स्पष्ट करें कि वो हमारी बात से सहमत हो जाए, ये भी एक कला है। अगर सही तरह से वो बात कही गई है तो ही वो बात से हमें सफलता मिलती है, नहीं तो फिर अगर वो हमारी बात से सहमत नहीं होते तो हम फिर असफल भी हो सकते हैं। और दूसरी बात कि कहाँ हमें कोई बात कहनी है और कहाँ नहीं कहनी है, कहाँ हमें चुप रह जाना है और कहाँ हमें बोलना है, ये भी समझ, और उस समझ के अनुसार जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार हम ये समझते हैं कि अब मुझे ये बात कहनी है और अभी अगर कहा तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मानो किसी को शिक्षा सावधानी देनी है तो हम 4-10 लोगों के सामने उसको वो बात नहीं कहें, लेकिन जब वो अकेले में है तब हम शुभ भावना से हाँ उसकी कुछ अच्छी विशेषताएं पहले बताते हुए फिर वो उनको हम ध्यान पर दें जैसे बाबा करते थे। और अगर बाबा को किसी की कोई बात यूं भी कहनी होती थी तो बाबा कई बार व्यक्तिगत रूप से नहीं कहते थे, लेकिन जनरल क्लास में जब मुरली चलाते थे तो उस समय कह देते थे, और उस में जिससे भी संबंधित वो बात होती थी वो उसको समझ में आ जाती थी कि बाबा ने ये बात मुझे आज रियलाइज कराई, लेकिन सबको नहीं पता चलता था कि ये किसकी बात है। तो वो कार्य भी हो गया। तो वाणी को हमें इस तरह से प्रयोग करना है, और जब हम ऐसे इसको प्रयोग करते हैं तो फिर वो कला के रूप में दिखाई देती है। फिर विचार करने की कला, हम सभी संकल्प करते हैं और संकल्प की शक्ति के महत्व को भी हम जानते हैं, तो यदि हमारे विचार सही दिशा में चलते हैं तो हम सही निर्णय लेकर के सही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और सफल होते हैं। लेकिन कईयों की विचार शक्ति बिखरी हुई होती है, वो एक दिशा में सोच नहीं पाते, माना उनके विचार एक दिशा में नहीं चलते या मन एकाग्र नहीं हो पाता है, कोई ऐसा निश्चित लक्ष्य भी उनके सामने नहीं होता है, और उसकी वजह से कोई विशेष परिणाम उनको अपने जीवन में प्राप्त नहीं होते हैं। तो विचारों को श्रेष्ठ बनाने की कला हमें तब आती है जब हम एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं। मनन चिंतन करके फिर उसके बाद हमें उन्हें एकाग्र करने की शक्ति, बाबा ने कहा जिस समय जो स्थिति हम बनाना चाहें हमारा मन उस स्थिति में स्थित हो जाए, हमारे अंदर वो कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर हो। अगर मैं फुल स्टॉप लगाना चाहूं तो मैं फुल स्टॉप लगा सकूं, ऐसे नहीं मैं लगाना तो फुल स्टॉप चाहती हूं लेकिन मेरा मन तो प्रश्नों से बाहर आ ही नहीं रहा, तो उसको हम कला नहीं कहेंगे, वो एक साधारण मन है। अगर विशेष अगर हम उसे कहते हैं तो इसका मतलब जब चाहे जैसे चाहे मन को अगर वो विचार नहीं करना है तो नहीं करना है, फुल स्टॉप माना फुल स्टॉप। और यदि मुझे अव्यक्त स्थिति में स्थित करना है, अपने मन को परम धाम में बिंदु रूप स्थिति में स्थित करना है, तो मेरा मन मेरी आज्ञा के प्रमाण चले, ऐसा नहीं मैं चाहती तो कोई स्थिति बनाना हूं और बनती मेरी कोई दूसरी स्थिति है। तो जब इस तरह से हम अपने मन को अभ्यास देते हैं तब फिर वो विचारों की कला हमारे अंदर आने लगती है। फिर है नौवीं कला पत्र लेखन की कला। पुराने जमाने में पत्र लिखे जाते थे, आज के जमाने में तो पत्र नहीं लिखे जाते हैं। मैं नहीं समझती कि आप में से कभी कोई पत्र लिखते होंगे, आजकल तो SMS और ईमेल का जमाना है, फिर भी दो तीन भाई हाथ उठा रहे हैं, कुछ कुछ भाई हाथ उठा रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी या तो SMS करते हैं या ईमेल करते हैं जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो जब पत्र लिखे जाते थे उस समय में तो ब्रह्मा बाबा भी अपने बच्चों को पत्र लिखते थे, हम सभी ने सुना है। और बाबा के पत्र ऐसे होते थे कि उसे जो भी पढ़ता था, माना जिसके प्रति वो पत्र लिखा जाता था उसे इतनी खुशी मिलती थी और बाबा से इतना अच्छा मार्गदर्शन मिलता था, उत्साह मिलता था, उसको लगता था जैसे कि बाबा का वरदान मुझे मिल गया, और उनको उसे बार बार पढ़ने की इच्छा होती थी। आज भी जिनको भी बाबा ने पत्र लिखे हैं उन्होंने संभाल कर रखा हुआ है, किन्होंने तो उसे फ्रेम भी करवा रखा है कि देखो बाबा ने मुझे पत्र लिखा। तो जब भी हम किसी को कोई संदेश देते हैं लिखित माध्यम से, चाहे वो जो भी माध्यम हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वो इन शब्दों में उसे दिया जाए, इस तरह से उसमें उनको मार्गदर्शन हम दें या इस तरह से प्रेरणा दें कि वो उसे सहेज कर रखें, उनको लगे कि ये मेरे लिए अमूल्य है, तब वो कला कही जाएगी। अगर सिर्फ साधारण रीति से ऐसे ही जो आपको अपनी बात कहनी है आपने कह दी तो वो कला नहीं है। फिर पालना देने की कला, जिसे हम दसवीं कला कहेंगे। हम सभी बाबा के बच्चे जब ज्ञान में आते हैं तो नया जन्म होता है, ऐसे ही कहेंगे अलौकिक जन्म होता है। तो फिर जन्म देकर के जैसे लौकिक माता पिता अपने बच्चों की पालना करते हैं, उन्हें लायक बनाते हैं, अपनी जिम्मेवारी समझते हैं कि अगर बच्चों को जन्म दिया है तो इन्हें पाल पोस करके समाज में एक श्रेष्ठ नागरिक बना करके तैयार करना ये हमारी जिम्मेवारी है। तो ऐसे ही बाबा भी हमें अलौकिक जन्म देने के बाद छोड़ नहीं देते हैं, हमें पूरी विधि पूर्वक पालना मिलती है, ईश्वरीय परिवार की भी हमें पालना मिलती है, हमारे लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि हमारी उन्नति हो, हम पुरुषार्थ में आगे बढ़े, और अगर कोई परिस्थिति आती भी है तो भी हर स्थानों पर निमित्त भाई बहने हैं जो आपकी परिस्थितियों का समाधान करने के लिए सदा ही हाजिर हैं। कभी भी कोई आपको मना नहीं करेगा, अगर आपको लगता है कि मुझे इनसे कोई मार्गदर्शन लेना है या कोई मुझे समाधान लेना है। तो ऐसे ही जब दूसरी आत्माओं के प्रति हम उन्हें ज्ञान सुनाते हैं या उनमें ज्ञान का बीज बोते हैं तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनकी भी पालना उसी तरह से करें जैसे कि हमें इस ईश्वरीय परिवार में पालना मिली है। फिर 11वीं कला है व्यर्थ को समर्थ बनाने की कला। इस दुनिया में भी, लौकिक दुनिया में भी हम देखते हैं विज्ञान का जो सिस्टम है वो इतना शक्तिशाली है कि किसी भी व्यर्थ वस्तु को भी रिसाइकल कर लिया जाता है। आप मानो पुराने कागज हैं या पुराने फटे कपड़े हैं या लोहा है, लोहे के टुकड़े जैसे होते हैं या फिर शीशे के टुकड़े होते हैं, उसको कबाड़ी ले जाता है और ले जाकर के कारखाने में बेचता है और वो कारखाने में फिर से उसको उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित कर देते हैं। तो फिर अगर विज्ञान में वो शक्ति है, बाबा कहता है, तो हमारे अंदर भी जो व्यर्थ है उसको समर्थ बनाने की कला होनी चाहिए। और उसका भाव क्या है कि मानो अगर कोई भी ऐसी नकारात्मक परिस्थिति हमारे जीवन में उत्पन्न हो रही है, जैसे हमने बात की अभी कि मानो व्यापार में हानि हो गई, तो हम उसको सोचें कि ये भले मेरी विनाशी कमाई की हानि हुई है लेकिन मुझे अविनाशी कमाई का साधन मिल गया है, अब मुझे अविनाशी कमाई के लिए ज्यादा समय मिलेगा और ये कमाई मेरे साथ जाने वाली है, विनाशी कमाई तो यहाँ ही रह जाने वाली है। तो हम अपने आप को इस तरह से समझाकर मन को समर्थ स्थिति में रखते हैं, व्यर्थ संकल्प नहीं चलाते कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, देखो बाबा के बच्चे बने और मेरे साथ ऐसा हुआ, कई कई तरह के व्यर्थ संकल्प हो सकते हैं, लेकिन उसकी बजाय समर्थ स्थिति कैसे हो सकती है वो हम सोचें। तो फिर व्यर्थ को समर्थ बनाने की कला हमारे अंदर आती है। ऐसे ही स्वास्थ्य कला, संगम युग में हमारा ये शरीर भी बहुत वैल्यूबल है क्योंकि इस अंतिम जन्म के शरीर द्वारा ही हम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो जितना हम स्वस्थ रहेंगे उतना हम तीव्र पुरुषार्थ कर पाएंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए सबसे बड़ी जो दवाई बाबा ने बताई है, खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा मर्ज नहीं। तो अगर हमारा मन स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, तो कहते हैं आज 70% बीमारियां तनाव, चिंता और भय के कारण होती हैं। तो यदि हम चिंता, तनाव, भय से मुक्त हैं तो इन बीमारियों से हम अपने आप बच जाते हैं, ये बीमारियां हमारे समीप ही नहीं आती हैं। और अगर मानो कई और भी कारण हैं बीमारियों के, कभी कभी ऐसा होता है अनुवांशिक रोग होते हैं, जो आपके माता पिता या दादा दादी को रोग होते हैं वो बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर उनको हृदय रोग है तो हो सकता है बच्चों में भी हृदय रोग होने की संभावना हो, या डायबिटीज या ब्लड प्रेशर, कोई भी ऐसी बीमारियां, इनसे हेरिडिटरी भी होती हैं। कुछ रोग होते हैं जो मिलावट के कारण हो जाते हैं, आज खाने पीने की वस्तुओं में कितनी मिलावट है, कितना प्रदूषण है, उस प्रदूषण की वजह से भी रोग हो सकते हैं। कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, अब एक्सीडेंट में अगर कहीं हड्डी टूट गई, कुछ भी हो गया, तो कुछ चीजें जो हैं अगर वो हमारे सामने आ रही हैं और रोग उत्पन्न कर रही हैं तो मानो वो हमारा कर्म का हिसाब किताब तो है ही, वो हमने समझा कि भाई इस रूप में वो हमें हिसाब किताब तो चुकतू करना है, लेकिन फिर भी यदि हम स्वस्थ मन से उसको चुकतू करते हैं तो बहुत जल्दी दवा और दुआ के बैलेंस से हम उसको पार कर लेते हैं। तो इस तरह से समझते हुए अगर हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, इसमें बाबा फिर ये भी कहते हैं कि हमें सात्विक भोजन खाना है। सात्विक भोजन माना बाबा की याद में बना हुआ, बाबा को भूख लगा करके जब हम ब्रह्मा भोजन स्वीकार करते हैं तो उसमें वो शक्ति भर जाती है कि वो हमें शक्ति देता है और रोगों से मुक्त रखता है। फिर उसमें बासी भोजन नहीं खाना है। अगर आपका रखा हुआ भोजन खाते हैं तो ब्रह्मा बाबा बिल्कुल भी बासी भोजन नहीं खाने देते थे, क्योंकि दो बातें होती है उसमें, एक तो रात्रि के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो, और दूसरा जंग्स पैदा होने की संभावना होती है। तो अगर उसमें जंग्स पैदा हो गए तो वो भोजन खाने से इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन, और जैसे समझो व्यायाम करना है, आज आपने डॉक्टर सतीश गुप्ता जी की भी क्लास सुनी हो सकता है, उन्होंने भी आपको स्वास्थ्य के बारे में कुछ बातें बताई होंगी। तो आज के समय में हमें इतना ज्ञान स्वस्थ रहने के विषय में मिलता है कि हम सहज ही उसको अपनाकर अपने को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। फिर 13वीं कला है हास्य कला। हास्य कला कहेंगे प्रसन्न रहना अलग है और हास्य और विनोद ये अलग है। वैसे तो योगी जो होता है वो सदा ही अगर प्रसन्न चित है, आनंद स्वरूप की स्थिति में है, तो उसे अलग से हंसने बहलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि कोई ना कोई ऐसे मनोरंजन के साधन हमें उपलब्ध हों ताकि हम सदा खुश रह सकें। हम प्रयास करते हैं कि मेरा मन खुश नहीं है तो चलो हम कोई गीत सुन लें, कोई चुटकुला सुन लें, कोई कविता सुन लें, या मतलब ऐसा ही कुछ तरीका हम अपनाएं, नाटक देख लें। तो बाबा जो ब्रह्मा बाबा थे, ब्रह्मा बाबा भी बच्चों को हंसाते बहलाते थे। तो बाबा हमेशा संतुलन की बात कहते हैं, हम इतना भी गंभीर नहीं हो जाएं कि बिल्कुल हमारे जीवन में कहीं हंसी विनोद को स्थान ही ना हो। तो ऐसे बताते हैं कि बाबा कई बार हंसी करने के लिए बच्चों से आटे की, कच्चे आटे की गोली बनाते थे और उसे कहते थे बच्चे देखो अभी ताजा पेड़ा बना है, आपको खिलाते हैं, और उसको खिला दिया तो क्या लगेगा, तो सब हंसते थे उस बात को लेकर के। तो बाबा भी कई बार ऐसा करते थे। हमने बड़ी दादी जी को भी देखा कि दादी जी किसी को टोली खिलाने जाएंगी तो उनके मुंह में नहीं डालेंगी, पहले अपने मुंह में डाल देंगी, तो जैसे कि वो एक हंसी का साधन बन जाता था। तो दूसरों को हंसाना वैसे ये कला है, लेकिन बाबा हमें ये कहते हैं कि हमारी हंसी शिष्टाचार पूर्ण होनी चाहिए। ऐसी हंसी नहीं जिससे किसी को हम टोंट करें या किसी का उससे अपमान हो जाए, ऐसी हंसी नहीं, लेकिन जो सात्विक हंसी है। और बहुत जोर जोर से भी नहीं हंसना, जैसे दिखाते ना असुर कैसे हंसते हैं, शास्त्रों में दिखाते हैं। तो यदि हम इस तरह से हंसते हैं तो फिर ये हंसी जो है वो कला वाली हंसी नहीं है, लेकिन अगर शिष्टाचार युक्त हमारा विनोद है और जो भी हम मनोरंजन करते हैं उसमें भी यदि हमारे लिए कोई ना कोई शिक्षाएं भरी हुई हैं, प्रेरणाएं भरी हुई हैं, चाहे वो गीत है, कविता है, नाटक है, जो भी है, तो वो फिर सही हास्य विनोद कला है। फिर 14वीं है पब्लिसिटी करने की कला। बाबा के ज्ञान की पब्लिसिटी करने की कई विधियां हैं और ब्रह्मा बाबा हमें मुरली में वो तरह तरह की सेवा की युक्तियां बताते रहते हैं कि बच्चे कैसे आप बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचाओ, तो वो पब्लिसिटी करना है। तो कई बार बाबा ऐसे भी कहते हैं कि अगर आप अपना विजिटिंग कार्ड बनाते हैं तो कार्ड के पीछे एक स्लोगन लिखो और स्लोगन लिख के फिर सेंटर का एड्रेस लिख दो, तो जिसके पास भी वो कार्ड जाएगा उसको अपने आप सेंटर का एड्रेस मिल जाएगा, तो उसको जरूरत होगी तो वो सेंटर तक पहुंचेगा। तो ऐसे अनेक विधियां, जो भी विधियां हमें समय प्रति समय मिलती रहती हैं उसको यूज करना और अधिक से अधिक आत्माओं तक बाबा का संदेश पहुंचाना, तो चाहे उसमें बोर्ड लगाना हो, चाहे बैनर लगाना हो, चाहे पोस्टर लगाना हो, जो भी। फिर 15वीं है कर्म करने की कला। तो जैसे मैंने बताया आपको शुरू में कि जो भी हम साधारण कर्म भी करते हैं अगर वो कला के रूप में है तो उनका गायन होता है, वो एक चरित्र के रूप में होते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने जो भी कर्म किए तो ये देखने में आता था कि हर एक बच्चे उन्हें देखना चाहते थे कि बाबा कैसे खाता है, बाबा कैसे सोता है, बाबा कैसे चलता है, बाबा कैसे बोलता है, कैसे मिलता है, कैसे बैठता है, क्योंकि उस कर्म में विशिष्टता भरी हुई थी। तो हम भी जो भी कर्म कर रहे हैं वो इस तरह के हों, अगर ऐसे हैं तो वो कर्म अविनाशी कमाई का साधन बन जाते हैं। जैसे वो लौकिक कला दिखाने वालों के कर्म कमाई का साधन बनते हैं, ऐसे हमारी ये कर्म भी हर कदम में पदम जमा करने के निमित्त बन जाते हैं, क्योंकि ये कर्म योगी बनकर के हम कर्म कर रहे हैं। भले देखने में साधारण लग रहे हैं लेकिन कर्म योगी बनकर हम वो कर्म कर रहे हैं। और फिर उन्हीं कर्मों का मंदिर में पूजन भी होता है। अब देखो देवी देवताओं के कई बड़े बड़े मंदिर ऐसे हैं जिसमें उनके उठने का दर्शन होता है, उनके सोने का दर्शन होता है, उनका भोजन खाने का दर्शन, भोग लगाने का दर्शन होता है, या नहाने का, श्रृंगार करने का, मतलब अलग अलग कर्म के दर्शन होते, पूर्व विधि पूर्वक सुबह से रात तक उनकी जो दिनचर्या है उसके हर कर्म का दर्शन कराते हैं। तो क्यों यादगार बना? क्योंकि संगम युग पर उन्होंने वो हर कर्म चरित्र के रूप में किया, विशेष रूप से किया। तो देखने की कला क्या है? यदि हम सदा आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, सदा आत्मिक भाव से देखते हैं, तो वो देखने की कला है। तब उस दृष्टि में न्यारापन दिखाई देगा, तब उस दृष्टि में रूहानियत दिखाई देगी, और आप हजारों लोगों के बीच में भी हैं तो भी आप अलौकिक नजर आएंगे। जैसे कहते हैं ब्रह्मा बाबा का व्यक्तित्व कैसा था, चुंबकीय व्यक्तित्व कहते हैं ब्रह्मा बाबा का, कि कहां भी बाबा खड़े हो जाते थे तो अलग ही बाबा नजर आते थे। तो ऐसे हर कर्म कला के रूप में हो, ये हमारा पुरुषार्थ का लक्ष्य होना चाहिए। और जब हम ऐसे कर्म करेंगे तो सर्वगुण संपन्न तो हम अपने आप ही बन जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझती हूँ मेरे हिसाब से 16 कलाएं। एक और है समाने की कला। कोई भी बात हमें कहता है, 16वीं कला है, कोई भी बात हमें कोई कहता है तो वो बात यदि हम समाते हैं तो कई लोग नहीं समा सकते हैं, किसी की भी बात होती है तुरंत वो दूसरे तक कह देते हैं, तो यदि हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब वो कला हमारे अंदर नहीं है। अगर समाने जैसी बात है तो हम उसे समा सकें। तो ये 16 कलाएं हमारी कर्मों में होनी चाहिए। ओम शांति।